नमस्कार, मैं हूं पूजा मेहरोत्रा। मैं आपको सुना रही हूं भद्रा सिन्हा की रिपोर्ट। राजनेता संपादक एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून को लेकर याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता का पॉड वर्जन। सेना के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल, एक पूर्व भाजपा मंत्री, एक विपक्षी लोकसभा सांसद, वरिष्ठ संपादकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था और कई पत्रकार, ये सब सुप्रीम कोर्ट में भारत के औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं के समूह पर कार्रवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बुधवार को राज्यों और केंद्र की सरकारों से कहा कि जब तक केंद्र सरकार अपने प्रावधानों की फिर से जांच कर रही है, वे नए मामले दर्ज करने, नए सिरे से जांच करने या देशद्रोह कानून, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष भड़काने की कोशिश करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए कारावास का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। इसमें या तो लिखित या बोले गए शब्द भी शामिल हैं। याचिकाओं के एक समूह ने सामूहिक रूप से इस बारे में कई सवाल उठाए हैं कि क्या यह कानून विभिन्न संवैधानिक अधिकारों, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, का उल्लंघन करता है। इन याचिकाओं को जोड़ने वाला एक सामान्य सूत्र उनका यह तर्क है कि 1962 का सर्वोच्च न्यायालय का वह फैसला केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले, जिसमें औपनिवेशिक कानून की वैधता को बरकरार रखा था, और अब एक अच्छा कानूनी सिद्धांत नहीं रह गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांग खेमचा और छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल शुक्ला द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर ही राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 30 अप्रैल को केंद्र को एक नोटिस जारी कर उन पत्रकारों की याचिका पर जवाब मांगा था जिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित पोस्ट और कार्टून के लिए राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भी भेजा गया। इन दोनों ने तर्क दिया था कि धारा 124A किसी भारतीय के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है और अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मुक्त भाषण के अधिकार के लिए प्रस्तावित उचित प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आता है, जहां मणिपुर सरकार और विभिन्न राज्य के नेताओं के खिलाफ उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए वांग खेमचा के खिलाफ धारा 124A के तहत 3 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। वहीं शुक्ला द्वारा फेसबुक पर वह कार्टून पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा की गई फर्जी मुठभेड़ को दर्शाया था। इस जोड़ी के समर्थन में 3 हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई थीं। हस्तक्षेप करने वाले लोग चाहते हैं कि इस मामले में स्वयं पक्षकार बने बिना उनकी बात भी सुनी जाए। वरिष्ठ पत्रकार शशि कुमार द्वारा दायर की गई पहली हस्तक्षेप याचिका में दावा किया गया है कि 2016 के बाद से राजद्रोह के मामलों में नाटकीय उछाल आया है। साल 2016 में 35 की तुलना में 2019 में 93 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। आवेदन में कहा गया है कि यह ऐसे मामलों में 165% की उछाल है। उन्होंने अदालत को बताया कि इन 93 मामलों में से महज 17% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए, जबकि दोष सिद्धि की दर 3.3% तक ही सीमित थी। दूसरे हस्तक्षेपकर्ता और कानून के प्रोफेसर डॉक्टर संजय जैन ने अन्य देशों में राजद्रोह कानूनों का वृहत अवलोकन पेश किया है, ताकि अदालत को इस कानून का समसामयिक विश्लेषण करने में मदद मिल सके। तीसरे हस्तक्षेपकर्ता फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने भी अपने आवेदन में कुछ इसी तरह के तर्क दिए हैं। श्रेया और आमोदा, दोनों आंध्र प्रदेश की निजी मीडिया हाउस हैं, ने राज्य सरकार द्वारा मई 2021 में लोकसभा सदस्य आर के राजू द्वारा दिए गए व्यवस्था विरोधी बयानों को प्रसारित करने के मामलों में उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोनों मीडिया कंपनियों ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी फ्री स्पीच के अधिकार का उल्लंघन है और राजद्रोह के ये मामले मीडिया को सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को कवर करने से रोकने का एक प्रयास है। दोनों मीडिया हाउसेस ने यह भी तर्क दिया कि असहमति का अधिकार राइट टू डिस्टेंस अनुच्छेद 19 फ्री स्पीच का हिस्सा है और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए टिप्पणी की थी। समय आ गया है कि हम देशद्रोह की सीमा को परिभाषित करें। हालांकि इन याचिकाकर्ताओं ने 124A के संवैधानिक वैधता पर भी सवाल नहीं उठाया था, फिर भी उनकी याचिकाओं को CJI की पीठ के पास विचार करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि इसकी विषय वस्तु ने इस कानून को दुरुपयोग पर चिंता जताई थी। भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल SB वोम्टकेर ने पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर सरकार के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करने वाले कानून एक अनुचित प्रतिबंध है। वह चाहते हैं कि धारा 124A को तीन मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19(1)(a) स्वतंत्र भाषण, अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार से परे होने के कारण अमान्य अक्रिय घोषित किया जाए। और वह यह भी चाहते हैं कि शीर्ष अदालत धारा 124A से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियों को बंद करने के लिए एक मंद मस का निर्देश भी जारी करे। CJI रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने इस पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका की पड़ताल करने पर सहमति जताई और इस मामले में पीठ की सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल की उपस्थिति की मांग की। CJI ने तब टिप्पणी की थी कि इस याचिकाकर्ता, जिसने एक सैन्य अधिकारी के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की थी, की साख संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान CJI ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को भी चिन्हित किया और केंद्र सरकार से पूछा कि वह महात्मा गांधी सहित भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रावधान को निरस्त क्यों नहीं कर रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका में पत्रकारों को डराने धमकाने के लिए धारा 124A के बढ़ते दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया है। यह इस कानून के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करने वाला और असंवैधानिक ठहराने के लिए एक न्यायिक घोषणा भी चाहता है। गिल्ड का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार का एक पहलू है। साथ ही इसने आरोप लगाया है कि प्रेस के सदस्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए राजद्रोह कानून के तहत प्राथमिकी का सामना करना पड़ रहा है। गिल्ड ने अदालत से प्रेस के किसी भी सदस्य के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों की शिकायतों को असाधारण श्रेणी के मामलों के रूप में घोषित करने के लिए कहा है, जिसमें मामला दर्ज करने के लिए तब तक प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी जब तक कि ऐसी कार्रवाई उनके कर्तव्य के दायरे में आती है। वयोवृद्ध पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के साथ साथ गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने 1962 के केदारनाथ सिंह के फैसले की निंदा की है, जिसमें राजद्रोह कानून की संवैधानिक को बरकरार रखा गया है। इन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह फैसला उस धारा के शब्दों को पढ़ता है जिसे असंतोष को दबाने के इरादे से तैयार किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने आगे यह भी कहा है कि संवैधानिक की उपधारा संविधान निर्माण के पहले के कानूनों, यानी कि वे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दिनों वाले हैं, पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वे किसी विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए होंगे। संवैधानिक के उपधारणा के अभाव में 5 न्यायाधीशों की पीठ इस कानून को नहीं ठीक से पढ़ सकती थी। इसके अलावा केदारनाथ सिंह वाले फैसले में की गई इस धारा की व्याख्या, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक व्यापक प्रभाव डालती है। शौरी और कॉमन कॉज द्वारा दायर प्रस्तुत की गई संयुक्त याचिका में कहा गया है, इस धारा को उसके सादे और स्पष्ट अर्थ के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए, खासकर तब जब इसके पीछे का विधायी इरादा असंतोष को दबाने का था। मानवाधिकार संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि राजद्रोह एक राजनीतिक अपराध था और ब्रिटिश शौरी और कॉमन कॉज द्वारा दायर प्रस्तुत की गई संयुक्त याचिका में कहा गया है कि इस धारा को उसके सादे और स्पष्ट अर्थ के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए, खासकर तब जब इसके पीछे का विधायी इरादा असंतोष को दबाने का था। मानवाधिकार संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि राजद्रोह एक राजनीतिक अपराध था और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ राजनीतिक विद्रोह को रोकने के लिए और ब्रिटिश उपनिवेशों को नियंत्रित करने के लिए इसे दंड संहिता से जोड़ा गया। इसमें तर्क दिया गया है, हालांकि स्वतंत्र भारत में इस तरह के दमनकारी चरित्र के कानूनों का कोई स्थान नहीं है, इसमें कहा गया है कि इस धारा को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले असंतुष्ट, विश्वासघात और अस्वीकृत जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, जो इस प्रावधान को अमान्य बनाता है। मासिक पत्रिकाओं मास मीडिया और जन मीडिया के संपादक पत्रकार अनिल चामड़िया ने अपनी याचिका में अदालत से इस कानून को खत्म करने का आग्रह करते हुए राजद्रोह के इतिहास का पता लगाया था। वहीं मेघालय की संपादक मुखिम और जम्मू कश्मीर की भसीन ने शीर्ष अदालत से धारा 124(1) को अमान्य घोषित करने और इससे संबंधित सभी लंबित मुकदमों कार्रवाई और जांच को रद्द करने का आग्रह किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने इस मामले की सबसे मुखर याचिकाकर्ताओं में से एक रही हैं। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि ऐतिहासिक रूप से राजद्रोह कानून केवल राजशाही के हितों को संरक्षित करने वाला एक उपकरण था और इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया गया था जिन्होंने सरकार के एक अलोकतांत्रिक स्वरूप का विरोध किया था। इसलिए उनकी याचिका में कहा गया है कि धारा 124(a) का एक उदार लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के आदेश में मोइत्रा ने ट्वीट किया विक्ट्री, और साथ ही उन्होंने राजद्रोह कानून के स्थगन के असर का वर्णन करने वाला एक दस्तावेज भी साझा किया। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए पॉड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।